Market Mantra. Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And don't forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hain Market Mantra ke ek aur taza ank ke saath. Is karyakram mein hum desh videsh ki aarthik khabron ka jaiza lete hain, baat karte hain share bazaron ki. लेकिन आज रविवार का दिन है और जैसा कि आपको मालूम है, रविवार का दिन हम डेडिकेट करते हैं पूरी तरीके से म्यूचुअल फंड्स के लिए. और म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी आपके सवाल हो, क्या आपको खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, कितने समय तक म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, किस माध्यम से निवेश करना चाहिए, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे. तीन टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं. आप फोन कर सकते हैं हमें अपने सवाल पूछने के लिए. नंबर हैं 23-31-10-50 और 23-310-464. तीनों नंबर दिल्ली के. 011 एसटीडी कोड के साथ डायल करें, अपने सवाल पूछें, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी स्टूडियो में मौजूद हैं. आकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट मंत्रा में.
थैंक यू.
वेलकम आकार. एंड फर्स्ट द हेडलाइंस. Foreign investors pump in more than 1,000 crore rupees in Indian equities markets in just 2 days of May. Global gold prices fall for the second straight week to $2,308 per ounce and 9 IPOs worth 6,500 crore rupees to hit the Dalal Street next week.
विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मई महीने के पहले 2 दिनों में ही भारतीय इक्विटी मार्केट में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया. सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह भी गिरावट. प्रति औंस सोना $2,308 का हुआ. और अगले सप्ताह 6,500 करोड़ रुपए वाले 9 आईपीओज बाजार में आने को बिल्कुल तैयार.
We begin with the stories. Adopting a cautionary stance, foreign investors infused 1,156 crore rupees in the first two trading sessions of May. As per the depositories data, foreign portfolio investor or the FPIs invested 1,156 crore rupees in equities and sold 1,726 crore rupees in debt this month. This came after FPIs pulled out equities worth 8,700 crore rupees in April, and before that they made a net investment of 35,098 crore rupees in March and 1,539 crore rupees in February. And in the debt markets, foreign investors put in 13,602 crore rupees in March, 22,419 crore rupees in February and 19,836 crore rupees in January.
और पहले कॉलर आज के हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल को लेकर. संजय मुंबई से हैं. संजय, बहुत बहुत स्वागत आपका. आप अपना सवाल पूछ सकते हैं.
सर, माई क्वेश्चन इज आर कैलकुलेटिंग अल्फा बीटा स्टॉप रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा. हाउ मेनी ईयर्स ऑफ रिटर्न आर पेड इन वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन.
संजय, आपसे गुजारिश करेंगे, एक बार क्या आप अपना सवाल फिर से दोहरा सकते हैं.
सर, फॉर कैलकुलेटिंग अल्फा बीटा शार्प रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स्ट्रा, हाउ मेनी इयर्स ऑफ रिटर्न आर फेड इनटू वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन.
सी,
First of all, I mean, yes, all of this data is available on our website, Value Research Online. And, you know, we keep on updating these numbers as and when required on a continuous basis. But having said that, I would say that a retail investor should not, you know, go that much into these numbers. They are quite, you know, they can become quite complicated for an investor. And for you, the starting point could be just the Value Research star rating that we update on a monthly basis. And using that, you can, you know, shortlist the funds which are, you know, having a good rating and then decide between them depending on your requirements.
लेकिन आकार यहाँ एक सवाल हमारा है कि जो रेटिंग्स होती हैं, जो रेटिंग्स होती हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, वैल्यू रिसर्च की हो, मनी कंट्रोल की हो, बैंकों की अपनी रेटिंग होती है, तो उस रेटिंग को कैसे रीड किया जाना चाहिए, क्योंकि रेटिंग तो ऊपर नीचे होती रहती है, सेम रेटिंग किसी ने कुछ और दिया है, किसी ने कुछ और दिया है, ऐसे जो जिसकी 4-star रेटिंग है, कहीं 5-star है, दूसरे कंपनी के साथ कहीं 3-star भी है, हाउ टू रीड दोज रेटिंग्स?
देखिए, जो सबसे पहले जरूरी है, आप जहां की भी रेटिंग्स चेक कर रहे हैं उनकी मेथेडोलॉजी क्या है, आप सबसे पहले उसको जानिए, क्योंकि हर किसी की मेथेडोलॉजी अलग हो सकती है. और जरूरी नहीं कि अगर एक जगह का 3-star है तो दूसरी जगह का 3-star का मतलब भी सेम वही मान्य हो. अब उसके अलावा जैसे होता है कि आप सबसे पहले साथ में ये जानिए कि उसकी मेथेडोलॉजी क्या है, उसके बाद उन रेटिंग्स के बेसिस पे आप एक, वो हमेशा एक स्टार्टिंग प्वाइंट होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में और कुछ ना पढ़े, आप अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना बनाए, बिकॉज एट द एंड इट्स योर मनी एंड यू शुड टेक अ चार्ज. तो सबसे पहले आप उसको अच्छे से समझिए, उसके कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही है और उसके बारे में जानिए. तो मे बी आप ये कर सकते हैं कि आप स्टार्ट करने के लिए 4 और 5-star फंड्स या 3-star को देखिए, फिर उनके बाद उनकी गहराई में जाइए और डिटेल्स चेक करिए.
वन मोर थिंग आकार, हियर एज हर्ष जस्ट सेड दैट हाउ टू रीड इन टू द रेटिंग्स, बिकॉज डिफरेंट houses would have given different ratings to the same fund. Maybe one house could give five star, the other could give 4 or 3, so on and so forth. But one thing which you can, the investors can look into is the lowest common denominator. As in, if let's say 4 or 5 different, you know, houses have given, let's say on an average 4 to 5-star, that means that fund could be presumed to be relatively safe or to be up to that standard, if you may say that. So, having said that, we are joined in by our next caller, that is Gopal from Mumbai. Gopal?
Hello, Markman ji ka namaskar.
Ji, namaskar.
Mera, main abhi naya aadmi hu, main mutual fund mein entry karna chahta hu, lekin main usse entry karne se pehle aapse kuch puchna chahta hu ki mutual fund mein fixed deposit se zyada profit milta hai? अगर ऐसा है तो श्रीराम फाइनेंस में मेरा ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट चल रहा है और श्रीराम फाइनेंस ने अब म्यूचुअल फंड में भी एंट्री किया है, तो श्रीराम फाइनेंस का कोई ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं एंट्री मार सकता हूँ?
देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक दफा शायद आपने ये क्वेश्चन पहले भी आपकी तरफ से आया था. तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं. एक इक्विटी होते हैं, एक हाइब्रिड होते हैं और एक फिक्स्ड इनकम होते हैं. तो श्रीराम के म्यूचुअल फंड स्कीम्स आई है, बट उसके अलावा और भी बहुत सारी फंड कंपनियां हैं जिनकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स बाजार में ऑलरेडी है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर एएमसीज मौजूद है. तो सबसे पहले देखिए, एफडी आपको म्यूचुअल फंड स्कीम आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न देगी, उसमें कोई शक नहीं है. बट वहां पे भी कुछ तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम्स है. एक होती है फिक्स्ड इनकम, जो कि नॉर्मली हम लोग एफडी से ज्यादा कंपेयर करते हैं, लेकिन एक फिक्स इनकम स्कीम और एफडी में वही पैसा लगना चाहिए जिसकी जरूरत आपको हाल फिलहाल में कुछ ही सालों में पड़ने वाली हो. जो एक फिक्स इनकम है वो एफडी का ऑल्टरनेटिव है, उसका बेहतर ऑल्टरनेटिव है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे वो भी पैसा लगाए जो कि आपको 8 या 10 साल के बाद चाहिए. वहां पे आप केवल वही पैसा रखें जो कि आपको अगले 3 से 5 सालों के अंदर जरूरत पड़ेगी. उसके लिए आप एक अच्छा क्वालिटी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ढूंढ सकते हैं जो कि आपका फिक्स इनकम में ही आता है। और यहां पे श्रीराम से ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप किसी और दूसरी कंपनी का, जैसे कि मैं आपको कहूंगा कि आप एक्सिस का देख सकते हैं, एक्सिस का शॉर्ट टर्म देख सकते हैं, नहीं तो बंधन का बॉन्ड शॉर्ट टर्म ले सकते हैं, वो आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न भी देगा। और ये श्रीराम से ज्यादा पहले से फंड्स चलते आ रहे हैं तो इनका ज्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है हमारे पास। वहीं पे अगर आप ये तय करते हैं कि जो ये पैसा है ये आपको 5 साल के अंदर जरूरत नहीं है, 5 साल के बाद चाहिए, तो मैं ये मान रहा हूं कि आपने इससे पहले कभी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप एक नए इन्वेस्टर है, तो उस केस में आपको एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड लेना चाहिए। अग्रेसिव हाइब्रिड क्या करेगा, ये आपका इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों का मिक्सचर है और इक्विटी का पोर्शन अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास रहता है और जो फिक्स्ड इनकम है वो 30%। तो उससे होगा ये, जब भी मार्केट में डाउनटर्न आता है, ज्यादा उथल पुथल होती है, तो ये फंड भी गिरेगा क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, लेकिन एक प्योर इक्विटी फंड और मार्केट के कंपैरिजन में कम गिरेगा, तो उससे आपको कम चिंता होगी, कम परेशानी होगी। लेकिन वहीं क्योंकि इसका जो मेजर पोर्शन है 70% वो इक्विटी में इन्वेस्टेड है, तो आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पे भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो वहां पे अगर मैं बात करूंगा कि आप अग्रेसिव हाइब्रिड में कौन सा एक फंड सही रहेगा, तो आप आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट ले सकते हैं, या मिराए का असेट अग्रेसिव हाइब्रिड भी फंड ले सकते हैं। ये दोनों ही फंड अच्छे हैं, बट इन तरह के फंड्स में जो भी अग्रेसिव हाइब्रिड है जिनमें थोड़ा भी इक्विटी एलोकेशन है, जो जरूरी है वो ये है कि आप केवल और केवल एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टैगर करिए।
आप आकार अभी हम बात कर रहे थे श्रीराम फाइनेंस म्यूचुअल फंड की, अभी न्यू एंट्रेंट है म्यूचुअल फंड में एज कम्पेयर टू अदर ओल्ड फंड्स। श्रीराम फाइनेंस को लेकर हमारे पास श्रोताओं के कुछ ये भी सवाल आते हैं कि इनके जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स हैं वो आमतौर पर बैंकों से 2-2.5% तक अधिक ज्यादा वो देते हैं, और अगर एक आइडियल म्यूचुअल फंड भी है तो हर उतार चढ़ाव को देखते हुए 10-11% देता है। तो म्यूचुअल फंड वर्सेज फिक्स डिपॉजिट इन दिस पर्टिकुलर हाउस।
देखिए यहां पे मैं जो कहूंगा वो सबसे पहले तो यह कहूंगा कि जो सबसे बड़ा रोल आ जाता है वो आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन का। जब आप ऐसे किसी भी तरह के कोई कॉरपोरेट एफडी, ये नॉर्मली कॉरपोरेट एफडीज होती है, या कोई ऐसा बॉन्ड अगर आप अलग से एक पर्टिकुलर कंपनी से लेते हैं, तो वहां पे आप अपना सारा पैसा केवल एक कंपनी के भरोसे छोड़ रहे हैं। वहीं जब आप कोई सी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते तो म्यूचुअल फंड स्कीम भले ही एक कंपनी चला रही है, लेकिन वो आपका पैसा जो आपका एक पोर्टफोलियो होगा वो तरह तरह के बॉन्ड्स में डिवाइड करेगी। अगर वहां पे आपने केवल 1,000 रूपये भी डाले हैं और एक वो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, तो उस एक फंड के अंदर लगभग कई सारे, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, 100 तरह के अलग अलग कंपनियों के बॉन्ड्स होंगे, और ये आपके भले ही 1,000 रूपये उन सब में थोड़ा थोड़ा पट जाएगा, तो उससे आपका रिस्क बहुत ज्यादा डायल्यूट हो जाता है। अगर कोई सी एक कंपनी ने डिफॉल्ट कर भी दिया तो जो आपका पैसा है बहुत ही छोटे से प्रपोर्शन आपके पैसे को जोखिम उठाना पड़ेगा, तो इसलिए जरूरी है कि आप इंडिविजुअली ना चाहे।
और नेक्स्ट कॉलर इज अनिल फ्रॉम इंदौर। अनिल
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग
सर, हमारा जो लोग रिटायर हुए उनके लिए फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड, इन दोनों में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होता है
रिटायरमेंट के लिए?
देखिए रिटायरमेंट में जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आपका क्वेश्चन है कि रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट के लिए फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड, इन दोनों में से बेहतर विकल्प क्या है? तो देखिए मैं सबसे पहले यह कहूंगा कि आपको जो करना है, आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, और उस स्ट्रैटेजी के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि असेट क्लासेस में डिफरेंस क्या है। एक होता है इक्विटी और एक होता है फिक्स्ड इनकम। इक्विटी जो है वो बेसिकली शेयर बाजार में रुपए लगाता है और आपके पैसे को ग्रो करने में हेल्प करता है और आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दिलाने में मदद करता है। इन्फ्लेशन बीटिंग यानी कि आप अभी आज रिटायर हुए हैं, मान लेते हैं अनुमान आपका खर्चा आज 50,000 रूपये है, बट वही सेम खर्चा आज से 10 साल बाद 50,000 उसके लिए काफी नहीं रहेगा। आपने बहुत सालों में देखा होगा जैसे दूध के दाम बढ़े हैं, चावल के दाम बढ़े हैं, ऐसे हर चीज के दाम बढ़ेंगे, तो ये आज से 10 और 15 साल बाद भी उसी पैसों से जो एक आपको इन्फ्लेशन बीटिंग एडजस्टेड इनकम की रिक्वायरमेंट पूरी होगी वो तभी पॉसिबल है जब आप अपना सारा का सारा पैसा केवल फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड डिपॉजिट में ना लगा करके एटलीस्ट 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा इक्विटी में भी लगाए। अब आपको करना यह है कि आपका ये एक असेट एलोकेशन प्लान हो गया अप्रोक्सीमेटली जिसमें कि आपका 1/3 इक्विटी है 2/3 फिक्स्ड इनकम है। दूसरी तरफ आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी आपका एक एनुअल विड्रॉल है वो कॉर्पस का 5-6% से ज्यादा ना हो तभी आप ये इन्फ्लेशन बीटिंग जो रिक्वायरमेंट है ये मीट कर पाएंगे। और म्यूचुअल फंड फिक्स डिपॉजिट से डेफिनेटली एक बेहतर ऑप्शन है, वहां पे आपका बेटर टैक्सेशन हो जाती है, टैक्सेशन डिफर हो जाती है, आपको एक थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिल जाता है तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड बेटर है। बट रही बात इनकम जनरेशन की तो बीइंग अ सीनियर सिटीजन आप अपने जो 2/3 फिक्स इनकम एलोकेशन है उसके लिए आप सबसे पहले जो गवर्नमेंट की गारंटीड स्कीम्स है जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया है उसका बेनिफिट उठाइए। उससे अच्छा फिक्स इनकम ऑप्शन एक गारंटेड इनकम के लिए और कोई सा नहीं है। तो सबसे
लेकिन उसमें 30 लाख तक ही जमा कर सकते हैं।
बिल्कुल आप 30 लाख तक ही जमा कर सकते हैं बट 30 लाख से भी आपको काफी अच्छा आज की तारीख में आपको 8.2% मिल रहा है। और वहीं पे देखिए अगर आपका स्पाउस जो है वो भी सीनियर सिटीजन है तो आप कर क्या सकते हैं, आप इसको 60 लाख कर सकते हैं।
yes.
आप एक अकाउंट में आप फर्स्ट होल्डर बन जाइए, दूसरे में वो फर्स्ट होल्डर बन जाएंगे तो इस तरीके से 60 लाख रूपये हो जाएंगे तो वहां से गारंटीड इनकम आएगी।
और 8% इज ए डिसेंट रिटर्न।
8.2% बहुत बढ़िया, जो एक गवर्नमेंट की बैकिंग के साथ जिसको कहते हैं गारंटीड रिटर्न, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और फिर थोड़ा पैसा आप हाई क्वालिटी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में लगाइए जो कि रीबैलेंसिंग के काम आएंगे। और 1/3 आपको इक्विटी में लगाना है जिसके लिए आप एक कोई लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले सकते हैं या आप एक फ्लेक्सी कैप फंड।
बट इन नो केस आकार यू विल सजेस्ट कि लोग ये जो कॉरपोरेट एफडीज हैं इसके लिए जाएं क्योंकि कई शिकायतें भी मिली हैं लोगों के पीछे।
नहीं देखिए कॉरपोरेट एफडीज में अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप सबसे पहले अच्छे से जांच कर ले उसकी कि उसकी रेटिंग क्या है, उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है।
yes, yes.
क्योंकि उनमें डिफॉल्ट का डर रहता है। ये जो आधा 1% ज्यादा आपको मिलता है वो इसलिए मिलता है, देखिए हमेशा याद रखिए अगर कहीं पर रिटर्न ज्यादा मिल रहा है ना तो वहां पर रिस्क भी ज्यादा होगा, दोनों चीजें एकदम साथ साथ चलती है।
बट हाउ फार इज दिस रेटिंग सर, जैसे AAA, AAA+, AA+, AA थिंग्स लाइक दैट, do they really, I mean, do they mean something when we talk about the corporate FDs?
Yeah, definitely we do. So, यही एक normal investor के लिए जो एक indication है देखना है, जो भी rating agencies है, ये सारी चीजें check करके जो ratings देती है उसके बाद हमारे लिए एक यही तरीका है जिससे पता लगता है कि ये कितना safe है। Unless until आप में इतना acumen है कि आप या पूरा आप इतनी जानकारी रखते हैं कि आप उनके पूरे financials detail में पढ़े, और जानकारी के अलावा उतना वक्त भी होना चाहिए।
Right. We are joined in by our next caller, Sirish from Mumbai. Sirish?
Sir, good evening.
Good evening, Sirish. Go ahead.
My question is, I had invested some amount in my mother in one mutual fund, but that scheme was not working. That is why they transferred that money to another scheme. But now my mother is no more. In earlier scheme, my name was there as a nominee. Now there, your name is not there in this case. Now what should I do?
Okay, so if your name is not there as a nominee, so you'll have to, there would be a legal process, legal in the sense the money would go to the legal heir, and for that you would have to produce some kind of a will or maybe the orders from the court. So you can just approach the fund house directly and ask them, tell them that if the name is not there for the nominee, then what's the process to proceed as a legal heir? Most likely they will ask for a copy of the will or, a kind of an affidavit from all the legal heirs who are there, so that they have a proof that no other person is likely to claim that money again and you are the rightful owner.
Right, और हम बात निवेश की कर रहे हैं, हमने म्यूचुअल फंड में निवेश की बात की, एफडीज में निवेश की बात की, सीनियर सिटीजन एफडी में निवेश की बात की। एक और निवेश का बहुत बेहतर ऑप्शन होता है जो जिसे सोना कहते हैं, सोने की कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह इस हफ्ते भी गिरावट रही है। यूएस फेडरल द्वारा ब्याज दरों को बरकरार फिलहाल रखे जाने की वजह से सोने की कीमतें टूटी हैं। इस सप्ताह सोने में लगभग 1% की गिरावट रही और यह प्रति औंस $2,308 रहा। इससे पहले अप्रैल महीने में सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $2,431 तक पहुंच गई थीं। इस बीच चांदी की कीमतों में भी लगभग 2% की इस सप्ताह गिरावट रही है।
सो आकर, हाउ डू यू सी द शीन इन गोल्ड? वुड इट सस्टेन और वुड इट गो डाउन? एज इन एज हर्ष जस्ट मेंशन दैट विद द फेड नॉट रियली लाइकली टू लोअर द रेट्स इन नियर टर्म्स, how do you see this going, the trajectory that it would take?
See, first of all, I would like to say that, you know, I'm no one to, you know, comment on the near-term performance. In fact, no one can. So, you know, without having hindsight, it is impossible to, you know, tell with guarantee that what will go up, what will go down. But having said that, yes, whenever there is a fear in the market, there is uncertainty, gold shines. And but having said that, you know, gold as a wealth creator over the long term is probably not the right choice.
Mm-hmm.
Because if you look at the long term returns, they are not as good. The last 10-year, 15-year returns, they have been only say around 8-9%, 7-9%.
Mm-hmm.
Whereas if you look at equities in the last decade, they have given like 12-14%.
Mm-hmm.
So, ideally, one should not invest in gold if the purpose is to build wealth over the long term. It's an unproductive asset class simply because of that reason.
Right.
But if you want to hedge your portfolio and allocate a little bit of to gold, then probably SGB is the right option for that.
That's more like the unofficial sovereign FD, you can say, that gold is.
Yeah, it has multiple benefits. One is that the tax is completely exempt on the capital gains if it is held in maturity. And then you also get 2.5% interest over and above the appreciation in the price of gold.
Yogesh, hamare agle caller honge Delhi se. Yogesh, aapka swagat hai. Sawal pooch sakte hain aap.
Hello.
Ji, pooch le. Yogesh ji, sawal pooch le.
Okay. तो मेरा सवाल ये है कि जैसे हम स्टॉक प्राइस में अगर इनफ्लो आता है, बहुत ज्यादा खरीद आती है, तो भाव को बढ़ता हुआ देखते हैं, क्या म्यूचुअल फंड के केस में ये चीज पॉसिबल होती है कि अगर किसी फंड में बहुत ज्यादा इनफ्लो आए तो एमए भी ऊपर नीचे होती है या आउटफ्लो से?
नहीं, देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर बहुत ज्यादा इनफ्लो आते हैं तो उससे एनएवी पे फर्क नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि यहां पे डिमांड सप्लाई से वैसे लेना देना नहीं होता है। ये चीज आपकी स्टॉक में इसलिए हो जाती है क्योंकि आपका थोड़ा बहुत डिमांड और सप्लाई में फर्क आ जाता है। बट म्यूचुअल फंड क्या करता है, जो एनएवी होता है वो आपका जो भी पोर्टफोलियो के अंदर सारे के सारे स्टॉक्स है उनकी जो वैल्यू है उसके बेसिस पे आपका एनएवी डिसाइड होता है हर डे एंड पे। बट हाँ, अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लो आ जाता है तो एक जो दूसरी परेशानी म्यूचुअल फंड्स में कुछ केसेस में देखी जाती है, खासतौर पे जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वहां पे, वो ये हो जाते हैं कि फंड मैनेजर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो उन पैसों को कैसे डिप्लॉय करे, क्योंकि जितना ज्यादा इन्फ्लो आएगा उसको उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, उतनी ही ज्यादा स्टॉक ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। आमतौर पे लार्ज कैप में इसकी दिक्कत नहीं होती, बट स्मॉल कैप में कहीं दफा दिक्कत होती है, जो कि आगे चल के कहीं दफा, जिसका एक कोई बहुत हार्ड हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बट कहीं दफा वो परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट कर देता है, तो एक वहां पे फंड मैनेजर के पास थोड़ी सी चुनौती आ जाती है।
इनफैक्ट आकार, लार्ज इनफ्लो ऑफ फंड्स इन लेट्स से इन अ पर्टिकुलर फंड दैट कैन ओनली रेज द एयूएम ऑफ द फंड, बट एयूएम इज नॉट दैट मटेरियल when we talk about the NAV of that particular fund. And you rightly also mentioned that many of the fund houses, especially is talking of the small cap funds, they have rather stopped taking investments from the public in a lump sum amount kind of. There have been a few houses, obviously for obvious reasons we are not naming the houses here, but there are funds. So that is one point wherein if there is a huge influx of money in any fund, it would be a big headache for the fund managers as well, because as you mentioned that there should be that amount of stocks, that variety of stocks need to be available in the market to cater to the demands. And next, our next caller is Kashinath from Chennai. Kashinath, Kashinath ji.
Good evening, Market Mentor team, sir.
Good evening, Kashinath ji. Go ahead with your question.
सर मेरा क्वेश्चन सवाल ये है जो एफडी के बारे में पूछना चाहता हूँ जैसे कि 8.59% देता है जो स्मॉल फाइनेंशियल सेविंग स्कीम होता है ना जैसे कि यूकेट स्मॉल फाइनेंस बैंक उज्जैन स्मॉल फाइनेंस एयू इसमें रखना कितना सुरक्षित है इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए एक साल दो साल के लिए धन्यवाद जी.
Before Akar answers the question, I must say that being from Chennai, you have very good Hindi speaking
must
ability.
Must be from the Hindi belt itself. But ये सवाल आकार अक्सर आता है जैसे हम corporate FD की बात कर रहे थे अब जो बड़े बैंक हैं वो तो 7 से 7.5% के बीच दे रहे हैं लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं यहां तक कि आप जो छोटे बैंक हैं वो थोड़ा ज्यादा देते हैं वहां कितना सेफ है.
देखिए आरबीआई के थ्रू काफी ज्यादा रेगुलेशंस होती है तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है. बट देखिए अगर इसको एक एक्सपर्ट की नजर से नहीं एकदम ही नॉर्मल इंसान के हिसाब से देखें अगर हम लोग एक नॉर्मल चीज देखें कि कहीं पे आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है कोई आपको ज्यादा दे रहा है मार्केट में तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा कोई तो रिस्क होगा तो वहीं पे एक छोटा सा रिस्क होता है. देखिए वो छोटी कंपनी है छोटा बैंक है तो और काफी चीजें हैं जैसे वो आपके घर के कितना करीब है कितना वहां पे अगर आपको कुछ इमरजेंसी में पड़ता है क्योंकि एफडी में जो आदमी पैसा रखता है उसमें केबी होता है कि उसको हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए
जी.
तो वक्त आने पे उसको लिक्विडेट करने में कितना आसान है तो वो सारी चीजें देखनी जरूरी है. और अगर आपको ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करनी है तो उसके लिए मैं कहूंगा कि इक्विटी ज्यादा बेटर है. अगर आप फिक्स्ड इनकम में खाली फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं आप किसी भी फिक्स्ड इनकम ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रिटर्न के पीछे मत भागे वहां पे आप ये देखिए कि पैसा कितना सुरक्षित है और कितना इजीली अवेलेबल है क्योंकि वही एक मेन ऑब्जेक्टिव है फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करने का.
यस लिक्विडिटी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड मूविंग ऑन टू सम अदर स्टोरीज हियर. As many as 9 IPOs worth 6,500 crore rupees are set to hit Dalal Street by next week, including 3 from the main board segment. The first IPO to hit the market next week is Indegene on May 6th. The issue will close on May 8th. The next in line would be Indegene and Aadhar Housing Finance that will be open for subscription on May 8th. And both of these IPOs will be closing on May the 10th. And in the SME segment, Winsol Engineers, Fine Listing Technologies, Refractory Shapes, Silk Flex Polymers India, TGIF, Agribusiness, Energy Mission, Machineries India will also launch their IPO this week. Akar, one very important point I would like to discuss here for the sake of our listeners is that the SMEs IPOs, they are coming up big time these days. Of course, they require quite a bit of amount as far as investment is concerned, maybe more than a lakh or so. Whereas the main board IPOs, normally they are they come for around 15,000 for a single lot. So what's this idea and what's the spurt behind this small cap or SME IPOs coming up big time this year?
So, you know, from the perspective of the investor, you know, I would like to first of all say that don't look at these IPOs from the perspective of, you know, making quick money or easy money, because that can be very risky mm-hmm. For the listing gains. Just go through their fundamentals first and, you know, if they look good to you, if they are good enough, only then invest from the perspective of, you know, from the long term. But having said that, an easier route would be just go with the mutual fund schemes, because if any particular IPO is that good or, you know, that investment worthy, your fund manager would anyways be taking care of it. Mm-hmm. He would be, you know, applying on your behalf over there and, you know, taking all the necessary steps to, you know, think on whether to include it in the portfolio or not.
Thank you so very much, Akar, for having come in our studios and shed light on and answered, obviously answered to our listeners' queries.
Thank you.
And before we close, here are the reminder of the headlines once again. Foreign investors pump in over 1,000 crore rupees in the Indian equity markets in just 2 days of May. Global gold prices fall for the second straight week to $2,308 per ounce, and 9 IPOs worth 6,500 crore rupees to hit Dalal Street next week.
आज के लिए बस इतना ही. कल शाम 6:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी मार्केट मंत्रा के नए अंक के साथ. कल सप्ताह की शुरुआत भी होगी और हम देखेंगे कि मार्केट कैसा कर रहा है एनएसई बीएसई, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई थी. और जी हां, कल भी आप अपने सवालों को लेकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं. तो अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.
नमस्कार.